SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो यानी ABS द्वारा जारी ताजा रोजगार आंकड़ों के अनुसार मई महीने में बेरोजगारी दर 4.1% पर स्थिर रही है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था से लगभग 2,500 नौकरियां कम हुई हैं, जबकि ये अनुमान लगाया गया था कि अप्रैल में 89,000 नौकरियां जुड़ने के बाद मई में 20,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि मई 2024 की तुलना में रोजगार में अब भी 2.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो महामारी से पहले के स्तर से बेहतर है। भागीदारी दर में थोड़ी गिरावट हुई है और ये अब 67% पर है। औसत कार्य घंटों में 1.3% की वृद्धि देखी गई। रोजगार और कार्यस्थल संबंधी मामलों की मंत्री अमांडा रिश्वर्थ का कहना है कि पूर्णकालिक रोजगार के आंकड़े मजबूत नौकरी के बाजार को दर्शाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में इजरायली राजदूत का कहना है कि ईरान पर जारी बमबारी अभियान के बीच इजराइल ऑस्ट्रेलिया को उसके नागरिकों की निकासी में मदद कर रहा है। राजदूत आमिर माइमून का कहना है कि वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालने के प्रयासों में व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। फेडरल सरकार की मदद से संघर्ष से भाग रहे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का पहला समूह बुधवार को जमीन के रास्ते इजराइल से बाहर निकला। विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने बताया कि ईरान में लगभग 1,500 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने सहायता के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि इजराइल में 1,200 से अधिक नागरिक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हवाई क्षेत्र बंद है, निकासी के प्रयास सीमित रहेंगे। हालांकि दोनों देशों से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निकालने के रास्ते तलाशना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। वहीं विक्टोरिया की क्राइम स्टैटिस्टिक्स एजेंसी का कहना है कि मार्च तक के एक साल में आपराधिक घटनाओं में 18% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पारिवारिक हिंसा की घटनाएं भी रिकॉर्ड स्तर पर रहीं, जिनमें 10% से ज्यादा की वृद्धि हुई और बच्चों द्वारा किए गए अपराध 1993 के बाद सबसे अधिक दर्ज किए गए। ये तब सामने आया है जब विक्टोरिया सरकार युवाओं से जुड़े अपराधों के चलते बेल कानूनों को कड़ा कर रही है और मशीटी जैसे हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा रही है। विक्टोरिया पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर डेविड क्लेटन का कहना है कि अपराधों को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। वहीं प्रथम राष्ट्र न्याय समर्थकों ने नॉर्दर्न टेरिटरी सरकार की उस नई योजना की आलोचना की है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सेंटर्स और सार्वजनिक आवासों में सशस्त्र पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कंट्री लिबरल सरकार ने घोषणा की है कि मौजूदा सेफ्टी अफसरों को फिर से प्रशिक्षित कर अगले साल की शुरुआत तक टेरिटरी पुलिस अफसर के रूप में तैनात किया जाएगा। इस योजना के तहत 50 से ज्यादा नए सशस्त्र अफसर सार्वजनिक स्थानों पर नियुक्त किए जाएंगे, ताकि असामाजिक गतिविधियों को निशाना बनाया जा सके। डार्विन स्थित एडवोकेसी ग्रुप जस्टिस नॉट जेल्स की प्रवक्ता क्रिस्टल रॉबर्ट्स ने कहा कि उन्हें चिंता है कि ये बदलाव प्रथम राष्ट्र समुदाय को असमान रूप से प्रभावित करेंगे। उनका कहना है कि गन, पेपर स्प्रे और ऐसी चीजों पर पैसा लगाने के बजाय उस पैसे को वहां लगाया जाए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारे लोग अच्छा महसूस कर सके, सशक्त महसूस करें और अपनी बात सामने रख सके। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और ईरान के बीच हवाई हमलों का सिलसिला सातवें दिन भी जारी रहा। इजरायली एयरफोर्स ने पुष्टि की है कि उसने गुरुवार को तेहरान और अन्य क्षेत्रों में हमले शुरू किए हैं। हालांकि लक्ष्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये हमले उस ड्रोन को रोकने के बाद हुए हैं जिसे इजरायल के अनुसार ईरान से छोड़ा गया था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया है। वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शन कारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर एकत्र होकर अमेरिका की संभावित भागीदारी का विरोध किया। और अब अंत में खबरें भारत से। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 210 लोगों के डीएनए का मिलान पूरा कर लिया गया है। अब तक 187 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 12 जून को लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद 29 अन्य लोग भी इसकी चपेट में आकर मारे गए। इस बीच दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। विमान में 180 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। उधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें पेट में संक्रमण की शिकायत के बाद 15 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और वे चिकित्सकों की निगरानी में अब ठीक हो रही हैं। इसी के साथ 19 जून 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।